आज के इस परम पावन राधाष्टमी के अवसर पर आप सबका राधा मदन गोपाल मंदिर में स्वागत है। आज हम श्रीमती राधा रानी, जो कि भगवान श्री कृष्ण की सर्वोच्च भक्त है, वास्तव में राधा रानी वह भगवान ही है भक्त के रूप में, उनकी महिमा के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं चैतन्य चरितामृत से पहले कुछ तत्व के बारे में चर्चा करूंगा और फिर आनंद वृंदावन जंपू नाम का एक ग्रंथ है, कवि कर्णपुर ने लिखा है, उसमें राधा रानी पहले बार कैसे भगवान श्री कृष्ण के लिए कुकिंग करती है उसके बारे में बहुत ही मनोहर वर्णन है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्व कांति सम्मोहिनी परा। तो पद्म पुराण में बताया गया है राधा रानी की महिमा के बारे में, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता। ये देवी किस प्रकार की देवी है? कृष्णमयी। कृष्णमयी मतलब संपूर्ण कृष्ण से ही भरी हुई है। आनंदमयो अभ्यासात, जो परम सत्य है वो आनंद से भरा हुआ है और वो जो आनंद है सारा जीवात्मा उस हद तक महसूस कर सकते हैं जितने वो परम सत्य से संबंधित है। तो हम सब आत्मा हैं, जितने हम भगवान से संबंधित हो जाएंगे उतना हम आनंद महसूस कर सकते हैं। जिस तरह से अगर कोई कमरा है उसमें एयर कंडीशनिंग है तो वहां पे बाहर भले ही गर्मी हो उस कमरे के अंदर हमें वो गर्मी से राहत मिलती है, सुकून मिलता है। तो उसी तरह से ये दुनिया जो है अलग अलग प्रकार के तापों से पीड़ित होती है और दुनिया से जब हम भगवान कृष्ण के स्मरण के कमरे में आते हैं वह मानो कृष्णा कंडीशन कमरा है वो, तो उससे क्या होता है? तपंती विविधास्तापा नैतान मद्गत चेतसा। भले ही अलग अलग प्रकार के ताप इस भौतिक जगत में हो रहे हो पर जिनकी चेतना मदाश्रया कथा मृष्टा श्रुण्वन्ति कथयन्ति च, जो भगवान की कथा में श्रवण करते हैं उनको ऐसा आश्रय मिल जाता है कि उनको जगत की जो ताप है वो उसे पीड़ा नहीं होती है। तो उसके लिए कृष्ण भावना को कृष्ण स्मरण के कमरे में हमें प्रवेश करना है और इस कमरे में सबसे अधिक जिन्होंने प्रवेश किया है वह है श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी जो है वह भगवान के हर तरह से सेवा करने में पूर्णतया परिपूर्ण है और वह हर तरह से भगवान को प्रसन्न करती है, इसीलिए कृष्णमयी देवी कृष्णमयी प्रोक्ता कृष्णमयी। क्यों? क्योंकि कृष्ण वो हमेशा कृष्ण से भरी है। कृष्ण से भरी है मतलब भगवान का स्मरण दो तरह से होता है, टू थिंक अबाउट गॉड एंड टू थिंक फॉर गॉड। भगवान के बारे में सोचना और भगवान के लिए सोचना, ये दोनों स्तर अलग है। भगवान के बारे में सोचना मतलब हम अलग अलग चीजों के बारे में सोच सकते हैं, मैं शायद हम क्रिकेट के बारे में सोच सकते हैं, पाकिस्तान के बारे में सोच सकते हैं, आतंकवाद के बारे में सोच सकते हैं। तो अलग अलग तरह से भगवान भी एक विचार का विषय बन जाता है, तो उस प्रकार से भगवान का एक स्मरण है। पर भगवान के लिए सोचना मतलब भगवान के बारे में भगवान को कैसे प्रसन्न करना है, भगवान को क्या किस चीज से असुविधा हो सकती है और वह कैसे मैं निकाल सकता हूं, वह सोचना और ऊंचा स्तर है। जो ब्रजवासी है वह जब यशोदा माई नंद महाराज जब रोज सुबह कृष्ण सब गैयों को निकल ले जाते हैं जंगल में, तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणकूचेषु न कृन्दिरुच्चयम्। गोपी गीत में बताया गया है कि तृणचरानुगम, रोज सुबह भगवान तृणचर जो घास खाते हैं गैया उनके पीछे भगवान जाते हैं, यद्यपि वह भगवान श्री निकेतनम उनके सीने पे श्री लक्ष्मी देवी वास करती है पर वह भगवान गायों की सेवा करते हैं। तो जब कृष्ण जाते हैं जंगल में, तो तभी यशोदा माई क्या करती है, वह यशोदा माई नंद महाराज वह भगवान से प्रार्थना करते हैं। उनके लिए भगवान कौन है, उनके लिए कृष्ण भगवान नहीं है, कृष्ण उनके प्रियकर है। ये सारे धर्मों में भगवान की पूजा करने के लिए बताया गया है। द होल वर्ल्ड प्रेज टू गॉड, द ब्रजवासीज प्रे फॉर गॉड। क्या सारी दुनिया भगवान से प्रार्थना करती है, ब्रजवासी भगवान के लिए प्रार्थना करते हैं। ये कृष्ण जा रहे हैं जंगल में, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, उनका संरक्षण करो। तो यह क्या है, यह प्रेम की पराकाष्ठा है। कि जब हम भगवान से संबंध पहले जोड़ते हैं, तो हम सोचते हैं भगवान इतने महान है, भगवान शक्तिशाली है, भगवान मेरा संरक्षण करेंगे। यह अच्छा है कि हम भगवान के पास आ रहे हैं। सातवें अध्याय में भगवद्गीता के 16वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि इस प्रकार के जो लोग हैं सुकृति है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन, वह सुकृति है। पर जो सर्वश्रेष्ठ भक्त है, वह भगवान से कुछ मांगने के लिए नहीं आते, भगवान के लिए कुछ करने लिए आते हैं। और ऐसे भक्तों में राधा रानी सर्वश्रेष्ठ है। कृष्ण देवी कृष्णमयी प्रोक्ता, तो जो कृष्णमयी इस प्रकार की देवी है, उनका नाम क्या है, राधिका परदेवता। परदेवता वह सारे देवताओं में सर्वश्रेष्ठ जो है भगवान कृष्ण है, और उनके सर्वश्रेष्ठ भक्त जो है राधा रानी है। तो ये दो नाम है एक ही व्यक्ति के हैं, राधिका और राधा। और दोनों नामों में समानता है और भिन्नता भी है। राधिका वो व्यक्ति को कहते हैं जो कृष्ण की सर्वोच्च पूजा करते हैं, पर राधा वो व्यक्ति है जिनकी कृष्ण पूजा करते हैं। कि जब भगवान कृष्ण देखते हैं कि राधा रानी की कितनी भक्ति है, कितना आकर्षण है, भगवान आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि राधा रानी जो आनंद ले रही है मेरी भक्ति में, वो आनंद मुझे भी नहीं मिल रहा है, यह कैसे संभव हो सकता है। तो ये राधा रानी का विशेषता है कि भगवान कृष्ण की भक्ति में इतना आनंद है कि वह आनंद स्वयं कृष्ण को भी नहीं मिलता है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि भगवान ने ऐसे क्यों बनाया है कि हमें सुख संतुष्टि चाहिए, तो भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए। तो भगवान तो ऐसे लगता है कि उनका बहुत अहंकार है, सब लोग आके मेरे नाम का कीर्तन करें, मेरे नाम का जप करें। पर ऐसी बात नहीं है, भगवान ने ऐसे रचना की है कि जो कीर्तन करता है उसको, जो कीर्तन सुनता है, जिनके लिए कीर्तन किया जाता है, उससे ज्यादा आनंद मिलता है। साधारणतया इस दुनिया में हम किसी का गुणगान करते हैं तो व्यक्ति फूकते रहता है, हाँ मैं इतना बड़ा हूं। और दूसरे लोग ज्यादा आनंद से कुछ गुणगान नहीं करने, करना पड़ता है, इसलिए मस्का लगाते रहते हैं। पर भगवान का ऐसा भाव, भगवान की प्रेम और भगवान से संबंध इतना विस्मयकारक है कि जब हम भगवान का गुणगान करते हैं तो जितना आनंद भगवान को मिलता है उससे अधिक आनंद भक्त को मिलता है। भगवान के स्मरण में भगवान ने ऐसी योजना बनाई है कि उनके स्मरण में, उनकी सेवा में उनसे अधिक आनंद उनके भक्तों को मिलता है, और सबसे अधिक आनंद जो है वो राधा रानी को मिलता है। और वह देख के भगवान भी आश्चर्यचकित होते हैं, इसीलिए भगवान भी राधा रानी को आदर देते हैं। तो देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, सर्वलक्ष्मीमयी सर्वलक्ष्मीमयी। ये जो राधा रानी है न केवल कृष्णमयी है, पर वह सर्वलक्ष्मीमयी है। सर्वलक्ष्मीमयी मतलब लक्ष्मी देवी जो है वह सारे सौभाग्य का स्रोत है। सबके जीवन में सौभाग्य आता है वह लक्ष्मी देवी से आता है, पर सारे लक्ष्मी देवी जो है उनकी संपूर्ण शक्ति जो है, तो लक्ष्मी देवी के बारे में चर्चा का परिणाम है। तो लक्ष्मी देवी की सारे लक्ष्मी देवियां जो है उनकी जितनी भी शक्ति है वह सब श्रीमती राधा रानी में है। सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति सम्मोहिनी परा, कांति सम्मोहिनी परा, सम्मोहिनी मतलब जो मोहन करती है, जो मोहित करती है। किसको? भगवान श्री कृष्ण को मोहित करती है। इस दुनिया में हम सब लोग जो है वो माया या मदन के प्रभाव से मोहित हो जाते हैं। उनके प्रभाव से बचना बड़ा मुश्किल होता है, पर वे मदन जो है, कामदेव जो है, वो भगवान कृष्ण से मोहित हो जाते हैं, पर भगवान कृष्ण वो राधा रानी से मोहित हो जाते हैं। जैसे सर्व कांति सम्मोहिनी श्रीमती राधा रानी का सौंदर्य, उनकी शीला, उनके गुण, उनका आचार इतना आकर्षक है कि भगवान श्री कृष्ण उनसे आकर्षित होते हैं। तो यह दिव्य संबंध है। जो इस भौतिक जगत में जो आकर्षण होता है वो भौतिक होता है, भगवान का और उनके भक्तों का आकर्षण आध्यात्मिक होता है। तो ऐसे श्रीमती राधा रानी का आज आविर्भाव दिन है। तो हमारे आचार्यों ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं। भगवान की लीलाओं के बारे में हमें जानना है तो हमें शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, और शास्त्रों पे जो आचार्यगण बहुत चिंतन करते हैं तो वो शास्त्रों का उन्हें और साक्षात्कार होता है। भगवान की लीलाओं का हम श्रवण बार बार करते हैं तो उसके बाद में वो लीलाओं का हृदय में पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति मतलब द पास्ट टाइम्स व्हेन हर्ड रिपीटेडली बिकम एनेक्टेड विद इन द हार्ट। और जो महान आचार्य गण है उन्होंने बहुत समय से स्मरण किया है, वो लीलाओं का विस्तारित रूप से उनको अपने हृदय में दर्शन होता है और फिर वे उन्हीं लीलाओं को हमें बताते हैं। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम में 90 अध्यायों में भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। उसमें से 40 अध्याय जो है वह भगवान की वृंदावन लीला पे वर्णन करते हैं, और इन 40 अध्यायों का वास्तव में 35 अध्याय है। पहले 5 अध्याय जो है उसमें भगवान मथुरा में उनका जन्म होता है और फिर बाद में वृंदावन में आते हैं। तो इन 35 अध्याय जो है उनका विस्तारित वर्णन कवि कर्णपुर नाम के एक महान भक्त थे, श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी थे, उन्होंने आनंद वृंदावन चंपू नाम के ग्रंथ में किताया है। तो उसमें से हम एक लीला की चर्चा करेंगे। जब श्रीमती राधा रानी का जन्म होता है, का आविर्भाव होता है, उसके बाद में सारे व्रज में और सारे उसके आजूबाजू लोग बड़ा ही आनंद आनंद हो जाता है। और जैसे ही कृष्ण और राधा रानी छोटे बालक है, वो बढ़ रहे हैं, तो वृंदावन के इलाके में दो भाग है। एक भाग है जो वृंदावन का, वहां पे नंद महाराज राजा है, और उसका दूसरा एक इलाका है बरसाना, वहां पे ऋषिभानु महाराज राजा है। और ऋषिभानु महाराज की जो बहुत ही प्रिय पुत्री है उनकी नाम है राधा रानी। तो जब भगवान कृष्ण का जन्म होता है तो बहुत समय तक नंद महाराज यशोदा माई को कोई पुत्र नहीं होता है, तो इसलिए जब उनको पुत्र होता है तो बड़ा आनंद होता है, और इसीलिए वे बड़ा उत्सव रखते हैं जिसमें वृंदावन और बाकी सारे जगहों से वो सब लोगों को बुलाते हैं। तो तभी कीर्तिदा और यशोदा ऋषिभानु जो कि राधा रानी के माता पिता है वे भी आते हैं। और फिर उसके बाद में कुछ सालों के बाद ऋषिभानु महाराज सोचते हैं कि हमें भी उसी तरह से विशाल उत्सव बनाना चाहिए जिसमें कि हम सारे ब्रजवासियों को बुलाएंगे, और खास करके जैसे नंद महाराज और यशोदा माई ने उनके घर में हम बुलाया था भोजन के लिए, वैसे हम भी उन्हें बुलाएंगे। तो तभी जब ऋषिभानु महाराज ऐसी योजना बनाते हैं तो वे अपनी पत्नी कीर्तिदा देवी से बातचीत करते हैं, उन्हें बड़ा आनंद होता है, और फिर उनकी एक दासी होती है सुचरिता, उनसे कहते हैं कि आप राधा रानी के पास जाओ और उनको बताओ कि वो इस उत्सव के लिए कोई विशेष व्यंजन बनाए। जब राधा रानी छोटी होती है तो तभी वहां पे एक बार दुर्वासा मुनि आते हैं, और दुर्वासा मुनि जब आते हैं तो ऋषिभानु महाराज उनको दुर्वासा मुनि की सेवा में लगाते हैं। तो राधा रानी इतनी अच्छी सेवा करती है कि तो दुर्वासा मुनि उनको आशीर्वाद देते हैं कि आप जो भी व्यंजन बनाओगे वह बहुत ही स्वादिष्ट होगा, और जो भी उसे कहेगा उसे कभी कोई बीमारी नहीं होगी, और उसका जीवन अमृत के समान हो जाएगा। तो इसीलिए वास्तव में राधा रानी सबको आशीर्वाद देती है, दुर्वास मुनि राधा रानी को आशीर्वाद नहीं दे सकते हैं, पर जो लीला में जब भगवान लीला करते हैं तो लीला का भाव क्या होता है कि भगवान अपना भगवत्व नहीं दिखाते हैं, भगवान अपने भगवत को छुपाते हैं ताकि प्रेम का आदान प्रदान हो सके। कृष्णा इज द गॉड हु कंसील्स हिज डिविनिटी सो दैट लव कैन रेन सुप्रीम। तो प्रेम का आदान प्रदान बिना किसी हिचकिचाहट के हो, इसीलिए भगवान अपनी दिव्यता को अपनी लीलाओं में छिपा देते हैं। और उस तरह से भगवान की जो रानी है, भार्या है, वो राधा रानी, वह भी अपनी दिव्यता को छुपा देती है। तो जब इस तरह से सुचरिता जाके, तभी राधा रानी ललिता विशाखा अपनी सखियों के साथ होती है, उनके श्यामा सखी भी होती है, कहते हैं कि ऋषि भानु महाराज ने ऐसा निवेदन दिया है कि कल ये उत्सव है और इसीलिए आपके लिए उन्हें बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन आप पकाइए। तो तुरंत राधा रानी और उनकी सखिया ऋषि भानु महाराज के महल में जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, ऋषि भानु महाराज को आलिंगन करते हैं, राधा रानी अब युवती हो गई है, सिर को सूंघते और कहते हैं कल बड़ा उत्सव है और आपने जो भी आज तक सीखा है अन्न बनाने के कलाओं में, उन सब को प्रदर्शन करने का आपको बहुत अच्छा मौका है, क्या आप पकाओगे इस तरह से? तो राधा रानी बड़ी प्रसन्न हो जाती है, उनके स्मित से ही वो हाँ बोल देती है। और फिर कीर्तिदा होती है, वो अपने एक वरिष्ठ सेविका होती है, उनको संदेश भेजती है उनके द्वारा यशोदा माई को, कहती है हे यशोदा, आपका नाम ही यह है यशदा, जो सबको यश प्रदान करती है। तो अगर आपने वास्तव में दो कुलों में, जिस कुल में आपने जन्म लिया और जिस कुल में आपका विवाह हुआ, दोनों को आपने यश प्रदान किया है, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि कृपया आप एक दिन के लिए हमारे घर आ जाए और अपने परिवार के साथ, और जिस तरह से नंद महाराज ने उत्सव मनाया था, हम भी मनाना चाहते हैं, तो कृपया आइए और आपका यश का एक अंश हमें भी प्रदान कीजिए। यशोदा माई नंद महाराज से बात करती है और फिर स्वीकार करती है इस आमंत्रण को। और फिर उस शाम को जब कृष्ण आता है लौट के गैयों को, तो कहते यशोदा माई उनसे कहती है कि हे कृष्ण, कल सारी गैयों के देखभाल करने के लिए तुम्हारे मित्रों को जाने दो, कल हमें ऋषि भानु महाराज के पास जाने का आमंत्रण आया है, तो कल तुम अपने मित्रों के साथ मत जाओ। तो कृष्ण कहते हैं ये ऐसा कैसा आमंत्रण है, आमंत्रण आ जाए तो मुझे और सारे मित्रों के साथ बुलाना चाहिए, अगर मेरे मित्र नहीं आएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। तो यशोदा माई कहती है कि आमंत्रण तुम्हारे लिए आया है, तुम्हारे 9 लाख गैया, तुम्हारे इतने लाखों गैया है, तुम्हारे लाखों सखाए है, वो सबके लिए आमंत्रण नहीं आया है। तो फिर अगर तुम आना नहीं चाहते, तुम अपने मित्रों के साथ जा सकते हो जग। तो अभी यहाँ पे भगवान कृष्ण अलग अलग रसों में लीला करते हैं। तो भगवान अलग अलग रसों में, माधुर्य रस जो है सर्वोच्च रस है, वो भगवान और उनकी जो सखियां हैं राधा रानी ललिता उनके साथ होता है। और फिर इस तरह से उनके जो मित्र है उनके साथ साक्ष्य रस होता है, उनके माता पिता जो होते हैं उनके साथ वात्सल्य रस होता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, सोचते हैं कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो यशोदा माई नंद महाराज नाराज हो जाओगे, पर जाऊंगा तो मेरे सखा नाराज हो जाएंगे। तो अभी वात्सल्य और साक्ष्य में द्वंद्व होता है, क्या करे सोचते हैं। तभी कृष्ण को याद आता है कि ऋषि भानु महाराज के घर में राधा रानी रहती है। तो माधुर्य रस जब आता है तो फिर साक्ष्य रस बाहर चला जाता है। तो फिर कृष्ण कहते हैं कि मैं जाऊंगा पर मेरे जो अंतरंग पार्षद है, मैं सखा है, उनको लेके जाऊंगा। तो जो बलराम जी, तो उनके परिवार के ही सदस्य, वो आएंगे और उसके साथ साथ बोले मेरा जो बहुत ही अंतरंग सखा जो है मधुमंगल, मधुमंगल के अनेक नाम है, बटू नाम है, कुसुमासव नाम है, अनेक नाम है। तो वो जो बटू है वो मेरे साथ आएगा और साथ साथ सुबल भी आएगा। तो यशोदा माई कहती है ठीक है, तो फिर उनको तुम लेके जाओ। और फिर अगले दिन ऋषभानु महाराज पूरा जो रास्ता है वृंदावन एक इलाके में है, उसके बीच में जंगल है, और फिर बाद में दूसरे जगह पे बरसाना है। तो बरसाना का जो इलाका है उसका जो प्रवेश द्वार है, ऋषभानु महाराज के महल का प्रवेश द्वार नहीं, जो गांव का प्रवेश द्वार है, वहां से फूलों की बौछार करके बहुत ही सुंदर योजना बनाते हैं। और सारे ऋषभानु महाराज के परिवार के सदस्य इंतजार कर रहे थे कब कृष्ण आएंगे, कब नंद महाराज आएंगे। और जब वे इंतजार कर रहे हैं, वहां पे उन्होंने संगीत का आयोजन किया। वस्त्र पहने हुए वह एक छोटे सूरज के समान है, और उनके बाजू में बलराम जी जो है उनका स्वर्ण वर्ण है, तो वह एक चंद्र के समान है। तो इस तरह से सारी ओर ज्योतिष फैल जाती है, सब हृदय प्रसन्नता हो जाती है। तो कृष्ण आते हैं, पीछे नंद महाराज आते हैं, जैसे ही कृष्ण को देखते हैं तो ऋषभानु महाराज कृष्ण को आलिंगन करते हैं, अपने सीने से लगाते हैं, उसके सिर को सूंघते हैं, फिर बलराम जी को आलिंगन करते हैं, और फिर नंद महाराज को प्रणाम करते हैं। ऋषभानु और कीर्तिदा और यशोदा माई एक दूसरे को आलिंगन करते हैं, और फिर सारे जो सेवक होते हैं उनको उनकी सुविधा सेविका के लिए योजना करने को बोल देते हैं। और फिर यशोदा माई अंतपुर में प्रवेश करती है, वह देखना चाहती है कि रसोई में क्या क्या बनाया है। तो वह जाती है जहां पर राधा रानी ने सारे व्यंजन बनाए, और वह देखती है इतने सारे व्यंजन और इतने सुंदर। आनंदावन जब मैं बताया है कि जो प्रसाद होता है, जो अन्न होता है, वह सबसे पहले देखने से पहले ही सुगंध से व्यक्ति को उसे आकर्षित करना चाहिए। सुगंध से पहले आकर्षित हो जाएगा, फिर बाद में दृष्टि से आकर्षित करना चाहिए, दिखने में बड़ा आकर्षक होना चाहिए, और तीसरा स्पर्श के लिए बिल्कुल उचित होना चाहिए। तो जो नरम होना चाहिए वो नरम होना चाहिए, जो नरम होना चाहिए तो फिर उसके बाद में स्वाद के लिए। तो हम साधारणतः प्रसाद सोचते हैं और स्वाद की बात है, पर स्वाद आखिरी है। तो यह जो रस का आस्वादन है उसमें जो स्वाद है, जो शुरुआत होती है वो सुगंध से होती है, और जो योग में स्तर होते हैं, ध्यान, धारणा और समाधि, अलग अलग स्तर होते हैं। तो जो ध्यान जो होता है वो सुगंध से ही शुरू हो जाता है, और जब स्वाद ग्रहण करते हैं तब समाधि में पहुंच जाता है। तो इस तरह से यशोदा माई जब ये प्रसाद को देखती है तो वह इतनी प्रसन्न हो जाती है। वह राधा रानी अभी यशोदा माई को, सारे ब्रजवासियों को पता है, अभी तक ऐसे प्रस्ताव तो नहीं आया, पर सारे ब्रजवासियों को पता है कि सारे जो ब्रज कुमार है और जो बरसाना कुमारी है, वह दोनों एक दूसरे के लिए है, और उन दोनों का मिलन करने के लिए सारे ब्रजवासी उत्साही रहते हैं। तो इसलिए यशोदा माई के उपस्थिति में राधा रानी जो होती है थोड़ी शर्मा जाती है। तो जब इस तरह से बहुत ही सुंदर व्यंजन बताए हुए देखते हैं, तो फिर राधा रानी को यशोदा माई आलिंगन कर लेती है। वो कहती है कि जो अलग अलग प्रकार के अन्य व्यंजन बनाने की जो शीला है, यह एक स्त्री का सबसे सुंदर आभूषण है, और वह आभूषण तुम में पूर्ण मात्रा में है। जो तुमने बनाया है ये चमत्कारिक तरह से बनाया है। तो यशोदा माई के साथ रोहिणी भी आई होती है, और तभी कीर्तिदा भी वहां पे आ जाती है, जो राधा रानी की माता है। और यशोदा कहती है कीर्तिदा से कि ये जो राधा रानी है, इसका शरीर जो है यह तो एक कमल के पुष्प के समान कोमल है, और आपने इस कोमल शरीर वाले राधा रानी को इस प्रकार से व्यंजन, इतने सारे व्यंजन बनाने में ले, इतनी तपस्या में क्यों लगा दिया। ये राधा रानी तो इस उम्र की है कि उन्हें खेल कूद करना चाहिए, इस प्रकार के बड़े उत्सव के लिए व्यंजन बनाना यह तो वरिष्ठ गृहणियों का कार्य है, इस तरह से आपने तपस्या में राधा रानी को क्यों लगाया। तो कीर्तिदा कहती है कि आपने जो बताया है वह सत्य है, जब ये उत्सव होने वाला था तो ऋषिभानु महाराज ने हंसी मजाक में ही कहा राधा रानी से कि आप अगर कुछ बनाना चाहती हो तो बना सकती हो। तो पर राधा रानी ने अपनी स्वेच्छा से ही इतने सारे व्यंजन बना दिए, हम भी आश्चर्यचकित हो गए। और ऐसे नहीं है कि सारे जो व्यंजन बनाने थे, सारे व्यंजन बनाने की जिम्मेदारी राधा रानी को दी गई है। वास्तव में वहां पे लगभग 100 से अधिक व्यंजन होते हैं। और कीर्तिदा बताती है कि यह तो सिर्फ विशेष व्यंजन है, मेन कुकिंग हमने दूसरे जगह पे किया है। राधा रानी ने सिर्फ विशेष व्यंजन बनाए हैं। और फिर राधा रानी अपनी सखियों के साथ होती है, वो सब श्रवण कर रही होती है, तो बोलते हैं यशोदा माई रोहिणी कहती है कि वास्तव में तभी राधा रानी और श्यामा सखी वहां पे होते, तो श्याम और श्यामा सखी ये राधा रानी की पार्षद है और कृष्ण का एक नाम है श्याम। तो तभी रोहिणी कहती है कि वास्तव में ये राधा रानी और श्यामा इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो तभी जब ये बोलते हैं तो जब वो श्यामा बोलती है तो उससे श्याम शब्द निकल जाता है। तो यह सुन के सारे लोग प्रसन्न हो जाते हैं, राधा रानी बड़ी शर्मा जाती है। तो कहते हैं, तो तभी वो कहती है कि अभी आपने सारा बना लिया है, तो कहते हैं कि आप रोहिणी, आप बड़ी तत्पर हो, तो आप इशारा इसके ये परोसने की सेवा आप कीजिए। तो कीर्तिदा जो होती है वो इस तरह से रोहिणी को निवेदन करती है। तो और यशोदा माई कहती है, नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है कि जिन्होंने पकाया है उन्हें ही परोसना चाहिए। तो सबकी योजना होती है कि राधा और कृष्ण को साथ में लाया जाए। और तभी राधा रानी कहती है कि नहीं नहीं मैं अगर अन्न परोसूंगी तो वो सिर्फ मैं अंतपुर में यशोदा माई को परोसूंगी। और वो श्यामा सखी से कहती है कि तुम बाकी सब कृष्ण अपना बलराम जी नंद महाराज उनको तुम परोसो। श्यामा सखी कहती है यह कैसे संभव है, मैं अकेला नहीं कर सकती। तो तभी यशोदा माई कहती है कि जो स्त्री है उनको दोनों सीखना चाहिए, पकाना और परोसना भी। तो मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम परोसो, तो तुम सर्विंग करो। तो तभी उसी बीच में नंद महाराज और सारे जो उपस्थित जो आए होते लोग सब अंदर आ जाते हैं प्रांगण में। नंद महाराज बीच में बैठते हैं, उनके बाएं ओर दाएं ओर उनके बलराम जी बैठते हैं, उनके बाजू में कृष्ण, दूसरे बाजू में कृष्ण बैठते हैं, कृष्ण के बाजू में बट्टू बैठ जाता है मधुमंगल, और फिर उसके दूसरे बाजू में जो होता है सुबल बैठ जाता है। तो राधा रानी श्यामा सखी उनको अभी सेवा करने को बोलते हैं, तो राधा रानी शर्म के कारण वो दूसरी ओर चली जाती है और बलराम जी को वो सेवा करती है, नंद महाराज को सेवा करती है, और वो कहती है श्यामा सखी को कि तुम बाकी सबको सेवा करो। तो तभी यशोदा माई कहती है कि देखो ये जो बटू है वो बहुत खाएगा, तो तो ये श्यामा सखी अकेले उसको सेवा नहीं कर पाएगी, तो इसीलिए तुम उस और उस पंक्ति में भी सेवा करो। इस तरह से वो राधा रानी को भी कृष्ण को सेवा करने को लगाती है। और तो जब बट्टू खाने लगता है तो वो वहां पे बैठते हुए नाचने लगता है, बोलता है, वो कहता है कि मैं तो ब्राह्मण हूं और मेरा उम्र छोटा है पर मैंने सैकड़ों जगह पे भोजन खाया है आज तक। पर आज तक इतना स्वादिष्ट अन्न मैंने कभी नहीं खाया है। और फिर कृष्ण कहते हैं कि ज्यादा बातें मत करो, चुपचाप खाओ। तो फिर भट्टू कहता है कैसे संभव है ये इतना स्वादिष्ट अन्न है कि मुझे सैकड़ों मुंह भी होते उससे भी मैं उसकी स्तुति इतनी नहीं कर सकता, मेरा एक ही मुंह है और तुम वो भी बंद कर रहे हो। तो ये तो बड़ा अन्याय है, तो ये जो अन्न है इसका गुणगान मैं कर ही नहीं सकता, पर ये अन्न खाकर मुझे आनंद भी हो रहा है और चिंता भी हो रही है। तो सब लोग अभी बट्टू बोलते जा रहा है, सारे लोग उसकी ओर देख रहे हैं। तो बोलते हैं आनंद और चिंता क्यों हो रही है? आनंद हो रहा है इसलिए कि इतना स्वादिष्ट अन्न है, पर चिंता इसलिए हो रही है कि ऐसा स्वादिष्ट अन्न खाने के बाद भविष्य में दूसरे अन्न से मैं संतुष्ट कैसे होगा। तो इस तरह से जब खेल कूद चल रहा होता है तो कृष्ण का एक तोता होता है, और कृष्ण का जो तोता होता है कृष्ण के कंधे पे बैठा होता है, तो बीच बीच में कृष्ण खा रहे होते उसको भी खिला रहे होते। तो जो तोता खा रहा, तोता जो होता है वो भी बोल सकता है, तो वो कुछ बोलने लगता है। तो जो बोलने वाला होता है तो ऐसे कभी कभी कुछ व्यक्ति को बोलना होता है पर हिचकिचाहट हो रही है, तो क्या होता है गला ऐसे हिलते हुए दिखता है कि वो कुछ बोलने वाला है। तो यशोदा माई देख रही होती है, वो देख रही होती है कैसे राधा रानी और श्यामा सखी सब सेवा कर रहे हैं। जो द्विजराज तुम कुछ बोलना चाहते हो, तो अभी द्विज इस शब्द का क्या अर्थ है, जो दूसरी बार जन्म हुआ है, तो ब्राह्मण को द्विज कहते हैं और साथ साथ जो पंछी होते हैं उनको भी द्विज कहते हैं। पंछियों का जो पहला जन्म होता है उनके वो अंडे के अंदर होता है, और दूसरा जन्म जब अंडा तोड़ के बाहर आते हैं तो दूसरा जन्म होता है। तो जो यशोदा माई कहती है द्विजराज तुम कुछ कहना चाहते हो, तो मधुमंगल कहता है कि अरे वाह आज यशोदा माई ने भी मान लिया कि मैं द्विजराज हूं। और कृष्णा तुम हमेशा बोलते रहते हो मैं ज्यादा बोलता हूं, पर यशोदा माई देख रही मैं कम बोल रहा हूं इसीलिए मुझे बोलने को बोल रही है। तो यशोदा माई हंसने लगती है और कहती है मैं तुम्हें नहीं तोते को बोल रही हूं। मंगल तोते तुम द्विजराज हो। तो तोता कहता है कि जो राधा रानी है यह वास्तव में इसके पहले जब बट्टू बोल रहा होता है बोलता है कि ये राधा रानी का जो का व्यंजन है यह लक्ष्मी देवी जो है उनसे भी बहुत स्वादिष्ट है। तो बट्टू कहता है, तो बट्टू ऐसे कह रहा होता है, तो तोता कहता है कि ये तो सत्य ही है क्योंकि लक्ष्मी देवी जो है वह राधा रानी से ही आती है। तो बट्टू बोलते तुम तो सच में ही द्विजराज बन गए, बहुत ही बुद्धि की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से राधा रानी कृष्ण को परोसती है, और कृष्ण जब इस तरह से परोस रहा होता है तो फिर राधा रानी अंतपुर में आके बाहर देख रही होती कैसे खा रही। तो एक अन्न वो परोसती है और कृष्ण खाते हैं पूरा चेहरा तेरा कर देते और उसको दूर ढकेल देते हैं। तो जब वो दूर ऐसे ढकेल देते हैं तो कृष्ण का यह भाव देखकर मां ने राधा रानी को हृदय का दौरा आ जाता है, क्या हो गया इतने ध्यान पूर्वक सब कुछ बनाया और क्या हो गया ये। जैसे ही वो कृष्ण दूर कर देते हैं वो बट्टू के पास जाता है, बट्टू खाने लगता है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो राधा रानी कृष्ण से क्रोध हो जाती है। और इस तरह से सब बड़े आनंद से व्यंजन जो है सार खा लेते हैं। और फिर ऋषभानु महाराज कहते हैं, फिर आनंद महाराज कहते हैं कि यह जो भोजन था बहुत ही स्वादिष्ट था, आज तक जो मैं भोजन खाया है उनमें से सबसे स्वादिष्ट भोजनों में से एक है। यशोदा माई है उनके सामने इसीलिए सबसे स्वादिष्ट भोजन नहीं बोलती है, सबसे स्वादिष्ट भोजनों में से एक भोजन है। फिर इस तरह से बड़े प्रसन्नता से सब जो भोजन ग्रहण करने का जो सौदा खत्म होता है। और फिर बाद में यशोदा माई अंदर आ जाती है और विचार में लगती है, वो देखती है कि जो कृष्ण है उन्होंने इतने सारे व्यंजन खाए होते हैं। और यशोदा माई को हमेशा चिंता होती है कि कृष्ण जंगल में जाते हैं, कृष्ण वहां पे मैं डिब्बा तो बना के देती हूँ कृष्ण को, पर कृष्ण इतने नटखट करते रहते हैं खेलकूद में लगे रहते हैं खाते कि नहीं ये भी पता नहीं मुझे। तो यहाँ पे कृष्ण जितने आनंद से खाया वह देख के बहुत प्रसन्न हो जाती है। तो तभी जब राधा रानी कृष्ण को ये भोजन खिला रही है, उन्होंने स्वयं पकाया है और स्वयं खिलाया है, तो वास्तव में जो भोजन है वह उनके राधा रानी के हृदय का प्रेम वह अन्न के रूप में कृष्ण को अर्पण कर रहे हैं, और कृष्ण जब खा रहे हैं वो केवल अन्न नहीं खा रहे, राधा रानी के प्रेम को स्वीकार कर रहे हैं। तो जो माधुर्य रस का प्रेम है वह वात्सल्य रस से भी ऊंचा है। तो इसीलिए जब कृष्ण अन्न ग्रहण करते हैं तो वो अन्न केवल शरीर के लिए नहीं है, खाना नहीं है, वो अन्न ग्रहण करना ये प्रेम का आदान प्रदान है। तो जब कृष्ण यशोदा माई से अन्न ग्रहण करते हैं तो वह उनके प्रेम को स्वीकार करते हैं, राधा रानी से अन्न ग्रहण कर रहे हैं तो राधा रानी के प्रेम का स्वीकार कर रहे हैं। और जो माधुर्य रस का प्रेम जो है सर्वोच्च है, श्री कृष्ण जब राधा रानी से अन्न ग्रहण करते हैं तो वो और अन्न ग्रहण करते हैं, वो राधा रानी का प्रेम जो है वास्तव में सबके प्रेम का स्रोत है। यशोदा माई का भी जो प्रेम है वो लीला के स्तर पे यशोदा माई वरिष्ठ है और राधा रानी छोटी है, पर तत्व के स्तर में जो है राधा रानी वह सबके भक्ति का कारण है। वह राधा रानी जो है वो लादिनी शक्ति है, लादिनी शक्ति मतलब जो आनंद देती है। तो चैतन्य चरितामृत में बताया गया लादिनी कराए कृष्ण आनंद स्वदान, लादिनी द्वारा कृष्ण करे भक्तेर पोषण। लादिनी शक्ति जो है दो कार्य करती है, लादिनी लाद, लाद मतलब आनंद, उसी से शब्द आता है प्रहलाद, प्रहलाद जो दिव्य आनंद ग्रहण करते हैं। तो सारा जो भक्ति में आनंद जिसको भी मिलता है वह लादिनी शक्ति से आता है। लादिनी शक्ति क्या करती है, भगवान को आनंद देती है। और जब हम सेवा करते हैं भगवान का तो हम जो सेवा करते हैं वह सेवा में राधा रानी अपना आशीर्वाद देती है और उसके द्वारा वह सेवा भगवान को प्रसन्न करती है। तो सारी भगवान को प्रसन्न करने की शक्ति है वह राधा रानी में है। राधा रानी ये लादिनी शक्ति का मूर्तिमान रूप है। तो जब हम सेवा करते हैं तो लादिनी शक्ति भी का एक अंश हम में प्रवेश करता है, उसके द्वारा हम भगवान को प्रसन्न करते हैं और उसके द्वारा भी हम संतुष्ट होते हैं। लादिनी शक्ति दो चीजें करती है, एक है भगवान को संतुष्ट करती, भगवान को प्रसन्न करती है, और दूसरा है भक्तों का पोषण करती है। किस प्रकार का पोषण है, ये आध्यात्मिक पोषण है। जब हमें भक्ति करनी होती है तो हमें इस दुनिया के सारे प्रलोभन है, दुनिया की सारी चिंताएं हैं, वह हमें दूसरी दिशाओं में खींचती है। तो उन सब को दूर रख के भगवान के भक्ति में एकाग्र रहने के लिए हमें जो शक्ति लगती है वो राधा रानी की कृपा से मिलती है। भक्ते करेर पोषण, वो भक्तों का पोषण करती है। तो जब यशोदा माई सोच में पड़ जाती है कि कृष्ण ने इतने आनंद से राधा रानी का ने बनाया हुआ अन्न ग्रहण किया, तो फिर राधा रानी जब अंत के कमरों में होती है, अपनी सखियों से बातचीत कर रही होती है, तभी यशोदा माई उनके पास जाती है और वो कहती है, हे राधा, तुमने जो अन्न बनाया था जिसमें बहुत ही स्वादिष्ट था और सबने जिस प्रकार से उसके गुणगान किया है, वह जो मैंने बताया था उसको ही उसकी पुनरावृत्ति करता है, तो बहुत प्रसन्न है, तुम्हारा जो गुण संपन्न हो वह बहुत ही अद्भुत है। तो राधा रानी शर्मा जाती है सुन के, कहते हैं कि ये उचित ही है कि कोई भी सुसंस्कृत व्यक्ति है खुद के गुणगान सुनता है तो उससे वो शर्मा जाता है, पर तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये गुणगान नहीं कर रही हूं मैं तुम्हारा, ये सिर्फ सत्य बता रही हूं मैं, ये तुम्हें ऐसे ही गुण है। तो मेरा एक निवेदन है, तो अभी ऋषिभानु महाराज जो है वह भी राजा है, पर नंद महाराज जो है वह उनसे भी ऊंचे, वो सारे इलाके के राजा है। तो वो मेरा एक निवेदन है कि जितने उत्साह से कृष्ण ने हमारा अन्न तुमने बनाया हुआ अन्न भोजन स्वीकार किया, तो मेरी इच्छा है कि इसी उत्साह से कृष्ण रोज भोजन करें। तो मैं चाहती हूं कि तुम रोज नंदगांव में आओ और वहां पे आकर, वृंदावन में आकर तुम कृष्ण के लिए भोजन बनाओ। तो जब यशोदा माई ऐसे बोलती है तो राधा रानी का हृदय अंदर से नाचने लगता है, क्योंकि राधा रानी की इच्छा है कि भगवान का दर्शन करे, भगवान की सेवा करे, पर फिर भी राधा रानी बाहर से कुछ बोलती नहीं है और वह शांत रहती है। यशोदा माया उनकी ओर देख रही है, बोलते मैं समझती हूँ तुम अपने वरिष्ठों के इजाजत के बिना कुछ नहीं करोगी, तो मैं कीर्तिदा को स्वयं पूछूंगी कि क्या वे तुम्हें इजाजत दे सकती है कि वह तुम कृष्ण के लिए आके रोज भोजन बनाओ। तो जब ऐसे बातचीत चल रही होती तभी कीर्तिदा वहीं से अंदर आ जाती और वह कहती है कि हे यशोदा, आपका जी इच्छा है वह सारे ब्रजवासियों का आदेश है, और आपकी सेवा करने का कोई मौका अगर मिलता है हमें तो यह हमारा भाग्य है। जरूर रोज मैं राधा रानी को, राधा को रोज आपके यहां पे भेजूंगी। तो कहते हैं कि राधा रानी जो जिस प्रकार से रसोई बनाती है, अन्न बनाती है, वह एक विशेष पद्धति है, तो उसके लिए हमने हमारे घर में विशेष योजना बनाई है, तो आपके घर में एक योजना होगी वह अलग होगी, तो फिर वो वहां पे अन्न कैसे बनाएगी। इससे सोच रहे होते राधा रानी का हृदय आनंद से नाच रहा होता कि रोज कृष्ण की सेवा करने का मौका मिलेगा। और तभी यशोदा माई बताती है, वो दोनों जो चर्चा करके योजना बनाते हैं कि नंद महाराज के घर के बाजू में ही एक जगह है पावन सरोवर नाम का, और वहां पे वो राधा रानी को कृष्ण के लिए अन्न बनाने के लिए एक विशेष पूरा किचन रसोई घर बना देती है, रसोई घर जैसी योजना बना देती है, और वहां पे रोज राधा रानी आके भगवान कृष्ण के लिए अन्न बनाती है। और इसे बताते हैं राधा रानी जब पकाते अन्न तो वो एक चूल्हा, दो चूल्हा, तीन चूल्हे पे नहीं, 50 चूल्हों पे साथ में बनाती है, और जो बना रही होती है तो वह चिंता और आनंद दोनों से भरी होती है। हर एक व्यंजन परिपूर्ण बनाना है, परफेक्ट बनाना है, और सब कृष्ण को के लिए संतुष्टि के लिए बनाया है। बताते हैं आचार्यगण कि राधा रानी जब कृष्ण के लिए अन्न बनाती है तो हर एक व्यंजन जो रोज बनाती है वो नया होता है। पूरे सनातन काल से इतिहास में राधा रानी एक भी व्यंजन दोबारा नहीं बनाती है। तो हम बोले कैसे संभव है ये? यह असंभव उनके लिए है जो सोचते हैं कि भगवान और भगवान की शक्ति के लिए कुछ असंभव नहीं है, संभव है। वास्तव में भगवान के पास अनंत शक्तियां और अपने भक्तों को अनंत शक्तियां देती है। तो राधा रानी इस तरह से बनाती है, अपनी सारी भक्ति से, अपनी सारी सेवा भाव से वो चपाती बनाएगी, तो रोज चपाती को कुछ अलग प्रकार से नया बनाएगी, और जो भी व्यंजन बनाएगी अलग अलग बनाएगी, और इस तरह से जो रोज राधा रानी कृष्ण की सेवा करती है। तो वास्तव में सेवा, राधा रानी को जब सेवा का मौका मिलता है, ऋषि भानु महाराज बताते हैं कि आप आके कृष्ण के लिए कुछ अन्न बनाओ, तो राधा रानी वो सेवा का मौका तुरंत स्वीकार कर लेती है, और वह सेवा सक्षम रूप से, उत्कृष्ट रूप से जब वो सेवा करती है तो उसका फल क्या होता है, उनको रोज सेवा करने का मौका मिल जाता है। तो यही सेवा का फल है। सेवा का फल क्या है कि हमें और सेवा करने का मौका मिले। वास्तव में भक्ति में जो आनंद है वह सेवा में ही सर्वोच्च आनंद है। जो भौतिक जगत में कोई सेवा करता है तो सेवा इसलिए करता है कि उससे कुछ फल मिले, और वो फल से आनंद होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी दफ्तर में नौकरी कर रहा है तो वह बोलेगा कल से, अगले महीने से आपको कोई तनख्वाह नहीं दी जाएगी, आपकी तनख्वाह बंद, तो बोलेगा आज से ही आपकी सेवा बंद। तो इस भौतिक जगत में हम जब सेवा करते हैं तो सेवा में ज्यादा आनंद नहीं होता है, वो सेवा हम करते हैं इसलिए ताकि फल मिले, और फल में आनंद होता है। और इसीलिए जब लोग काम भी करते हैं वो सोचते हैं कि कम से कम काम करके ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह कैसे प्राप्त करें, जो क्या है सेवा में कोई आनंद नहीं है। पर भगवान की भक्ति में जो सेवा है वह पूर्णतया अलग है। वह सेवा जो है वह प्रेम का को एक्सप्रेस व्यक्त करने का एक सुविधा है। प्रेम को व्यक्त करने की सुविधा है वो। इसीलिए हृदय में जितना प्रेम है उतनी सेवा हम करते हैं, और जितनी हम सेवा करते उसका दूसरा फल होता है कि जो हृदय का प्रेम है वह और बढ़ जाता है। प्रभुपाद जी जब अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का उन्होंने स्थापना की तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भगवत गीता यथारूप ये ग्रंथ लिखा और उन्होंने कहा कि ये कृष्ण भावनामृत संघ का ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ होगा, और अगर आप पूरे भगवत गीता यथारूप में पढ़ेंगे तो राधा रानी का नाम पूरे भगवत गीता में एक ही बार आता है। और वह कहाँ आता है, शुरुआत में जब प्रभुपाद प्रणाम मंत्र बोल रहे तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, जब प्रणाम मंत्र में एक ही पूरे भगवत गीता में राधा रानी का नाम एक ही बार आता है। क्यों, क्योंकि प्रभुपाद जी जो हमें राधा रानी का तत्व है, राधा रानी का लीला है, राधा रानी का प्रेम है, ये बहुत उच्च है। जो सिद्धांत है हम समझने के बाद राधा रानी के प्रेम को हम समझ सकते हैं। तो प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत में विशेष रूप से राधा रानी के प्रेम का वर्णन बहुत किया है, भगवद गीता में उन्होंने प्राथमिक रूप से किया है, तत्व ज्ञान बताया है। पर प्रभुपाद जी का भाव क्या था, प्रभुपाद जी का भाव था कि हम भक्ति कैसे व्यक्त करते हैं, सेवा के द्वारा। प्रभुपाद जी वृंदावन में ही थे और वो उनका उम्र 69 साल का था। उस समय साधारणतया लोग जो होते हैं वह रिटायर होके निवृत्त होके शांति से जीवन बिताना चाहते हैं, पर जो भक्त होता है भक्त की सेवा करने की इच्छा बहुत, जैसे भक्ति और बढ़ती है सेवा करने की इच्छा और बढ़ती है और बढ़ती है और बढ़ती है। तो प्रभुपाद जी जैसे ही उनको अपने गुरुदेव से मिलते हैं, गुरुदेव उनको आदेश देते हैं कि आप सारे विश्व भर में प्रचार करें, और तब से प्रभुपाद जी अलग अलग पद्धतियों से प्रचार करने की या इच्छा करते हैं। वो तो वो पहले सोचते हैं कि मैं तो अभी मेरा एक व्यवसाय है तो व्यवसाय को बढ़ाऊंगा और उससे जो पैसा कमाऊंगा वो मैं मेरे गुरुदेव के आंदोलन के लिए दान के रूप में दूंगा, इसलिए अपने व्यवसाय को बढ़ाते हैं। पर वो किसी के अलग अलग कारण से उनसे कुछ यश नहीं मिलता है उनको, तो फिर वो अपना एक ग्रंथ मासिका चलाते हैं, उसमें भी कुछ उनको यश नहीं मिलता है। कुछ समय तक चलता है पर बाद में दूसरा महायुद्ध हो जाता है तो वहां पे सरकार जो है कागज नहीं देती है, पैसे कम पड़ जाते हैं। वो एक संस्था चालू करते हैं, संस्था भी बंद पड़ जाती है, कोई षड्यंत्र हो जाता है उनके खिलाफ। तो इस दुनिया में क्या होता है कि हम सबकी बहुत से महत्वाकांक्षा होती है, मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा। जो छोटा बालक अभी नौजवान में प्रवेश करता है सोचता है कि मैं अभी इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनूंगा, मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा। फिर थोड़ा बड़ा हो सोचता, मैं तो भारतीय हूं, अमेरिका राष्ट्रपति नहीं बन सकता, ठीक है मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा। फिर बाद में सोचता है कि मैं, ठीक है मैं भारत, कम से कम मेरी खुद की कंपनी खोलूंगा। और दुनिया में इतनी समस्याएं आती है, इतने सारे हमें पराजय सामना करना पड़ता है कि जब तो कॉलेज से उत्तीर्ण हो जाते हैं कोई कंपनी में नौकरी मिल जाएगी तो भी अच्छा हो जाएगा। तो क्या होता है, हमारी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी होती है शुरुआत में, पर जब पराजय 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 समस्या समस्या आती तो महत्वाकांक्षा कम 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 होती जाती है। पर प्रभुपाद जी का क्या विशेषता थी कि जो भी उन्होंने किया, व्यवसाय चालू किया है उसमें पराजय मिला उनको, उन्हें संस्था चालू की उसमें पराजय मिला, उन्होंने अपना उन्होंने कुछ मासिक चालू किया उसमें भी कुछ यश नहीं मिला, उन्होंने अपने गुरु भाइयों के साथ उनको सहयोग करके कुछ प्रचार करने का प्रयास किया उसमें भी यश नहीं मिला। पर प्रभुपाद जी की महत्वाकांक्षा क्या थी, वह कम नहीं हुई वो बढ़ गई। प्रभुपाद जी बोले भारतवासी सुन नहीं रहे संदेश को, मैं अमेरिका में जाके प्रचार करूंगा। तो ये सुमति मोरारजी थी वो जो एक वहां पे बड़ी बिजनेस वुमन थी, उनको प्रभुपाद जी ने निवेदन किया कि आप आपके आपके स्टीमशिप में आपके जहाज में मुझे जाने का मौका दीजिए। तो उन्होंने कहा स्वामी जी अगर आपको भागवत कथा करनी है तो अमेरिका जाने की क्या जरूरत है, आप मेरे घर में आओ मैं रोज आपसे भागवत सुनूंगी। तो प्रभुपाद जी को इस तरह से भागवत सुनाना नहीं था उनको कि कोई अपने वो कहे कि नहीं मुझे सारे विश्व भर प्रचार करना है और अमेरिका आज सारे विश्व का राजा है तो मैं इधर जाना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी यू आर सो ओल्ड, अमेरिका इज सो कोल्ड, आप तो इतने वृद्ध हो, अमेरिका जो है उसमें इतनी ठंडी है, आप कैसे रहोगे वहां पे? प्रभुपाद जी बोले कि मेरे गुरु का आदेश का पालन करना, यही मेरे जीवन का उद्देश्य। और प्रभुपाद जी इनके जीवन में भक्ति कैसे दर्शाते हैं? सेवा से। 69 साल की उम्र में वे अमेरिका में गए, फिर उसके बाद में इनकी सेवा भाव इतनी थी, सारे विश्व भर प्रचार करना। 14 बार सारे विश्व का भ्रमण किया उन्होंने, 108 मंदिर बनाए, 70 से अधिक ग्रंथ लिखे, हजारों की मात्रा में लोगों को कृष्ण भक्ति की ओर प्रवृत्त किया। प्रभुपाद जी क्या बोलते थे कि हमें राधा कृष्ण की भक्ति करनी है। कैसे करनी है? द वे टू अंडरस्टैंड राधा कृष्ण's लव इज टू प्रीच कृष्ण कॉन्शियसनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। जब हम कृष्ण भावना का प्रचार करते हैं वह सेवा है, और उस सेवा के द्वारा हम भगवान राधा कृष्ण के करीब जाते हैं। तो वही राधा कृष्ण जो है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य, वह श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। और चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि पृथ्वी ते आचेत नगर अधिग्राम सर्वत्र प्रचार हो वे मोर नाम, कि सारे विश्व भर में मेरे नाम का प्रचार होगा। जब भक्त होता है, जब भगवान कोई वचन बोलते हैं तो भक्त ऐसे नहीं सोचता है कि भगवान ने बोला है भगवान पूरा करेंगे, नहीं, भक्त सोचता है कि भगवान ने बोला है उसको पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। और प्रभुपाद जी ने वो जिम्मेदारी स्वीकार की। भारत भूमि ते होइल मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। चित्मा बताते हैं कि इस भारत भूमि जिसने जन्म लिया है उसके उसकी जिम्मेदारी क्या है कि स्वयं में संदेश को स्वीकार करे और सबको दे। तो जो सेवा भाव है, जितना हम सेवा करेंगे उससे न केवल हम दूसरों को भगवान के करीब ले आएंगे, पर उससे हम भी स्वयं भगवान के करीब जाएंगे, क्योंकि सेवा ही माध्यम है जिससे हम भगवान के करीब जाते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने जो संस्कृत शब्द है भक्ति, उसका जो भाषांतर किया वह केवल इंग्लिश में डिवोशन नहीं किया, डिवोशनल सर्विस इंग्लिश में किया, भक्तिमय सेवा। तो जो सेवा है, जो राधा रानी भगवान कृष्ण के स्मरण हमेशा करती है, पर सिर्फ स्मरण नहीं करती है, स्मरण के साथ साथ सेवा करती है, और सेवा के लिए चिंता स्वीकार करती है। और वो चिंता में जो भगवान के स्मरण और तीव्र हो जाता है और बढ़ जाता है, उसमें जो आनंद है वह और ऊंचा आनंद है। तुमार सेवाए दुख होए जतो, सेओ तो परम सुख, सेवा सुख दुख परम संपद, नाशाए अविद्या दुख। भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं, हे प्रभु तुमार सेवाए दुख होए जतो, आपके सेवा में जो दुख है वही सेओ तो परम सुख, वह तो परम सुख है, क्योंकि वह सेवा से प्रेम का आदान प्रदान होता है। जो माँ होती है, छोटा सा बालक होता है, वो बालक के सेवा करने में इतनी चिंता होती है, पर उसमें प्रेम का आनंद होता है, उससे प्रेम की वृद्धि होती है। उससे भगवान से संबंध है तो उससे भी भगवान की सेवा में प्रेम का प्रदर्शन होता है, प्रेम का आनंद आदान होता है। और इस आनंद से भौतिक जो आनंद है, भौतिक दो क्लेश से हम परे जाते हैं। तो सर्विस इज द वहीकल ऑफ डिवोशन एंड सर्विस इज द इंजन ऑफ डिवोशन। जो सेवा है यह भक्ति को प्रदर्शित करने का एक निमित्त है, जो वहीकल है। अगर हमें यहाँ से कहीं जाना है तो हम गाड़ी, कोई तो गाड़ी चाहिए, तो हमें भक्ति को प्रकट करना है तो सेवा ये माध्यम है जिससे हम भक्ति प्रकट करते हैं। और न केवल माध्यम है, पर सेवा से भक्ति का भाव भी वृद्धि होता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि आप भक्ति करते हो, दिखावा करने की क्या जरूरत है, जोर से कीर्तन क्यों करना है, मन में भगवान है, हृदय में भगवान है, हृदय से भगवान सुन लेंगे, तो जोर से कीर्तन करने की क्या जरूरत है? तो जोर से कीर्तन करने की जरूरत इसलिए है कि आपको सुनाना है कि भगवान आपके भी हृदय में है, पर आप उनको सुन नहीं रहे, इसलिए बाहर से हम आपको सुना रहे हैं। पर यह एक कारण है कि भगवान जरूर हृदय में है, और हृदय में ही भगवान हमारे भावनाओं को समझ सकते हैं, पर जो प्रेम है वह प्रेम हमेशा व्यक्त होता है। व्यक्त किए बिना प्रेम का कुछ मतलब ही नहीं है। कि अगर कोई माँ कहती है अपने बच्चों से प्रेम करती हूँ, पर बच्चा रो रहा है और कहती है मैं मेरे बच्चों से प्रेम करती हूँ। बच्चा रो रहा है कुछ करो, नहीं मैं उससे प्रेम करती हूँ काफी है उतना ही। नहीं वो रो रहा है तो उसकी सेवा करनी, उसको शांत करना चाहिए। तो प्रेम का मतलब है कि सेवा व्यक्त करनी चाहिए हमेशा। और अगर हम ये केवल भौतिक जगत में नहीं है, आध्यात्मिक जगत में ही है। अगर आध्यात्मिक जगत में सोचिए कि सब लोग भगवान की सेवा सिर्फ हृदय में ही कर रहे हैं, सब लोग शांत बैठे स्मरण कर रहे हैं, तो कोई भी कुछ करता ही नहीं है, तो ऐसी जगह में कोई जाने की इच्छा नहीं करेगा, वहां से आने की इच्छा कर लेगा। तो आध्यात्मिक जगत में सब भगवान का स्मरण करते हैं, पर स्मरण के साथ साथ सेवा भी करते हैं। तो इसीलिए राधा रानी जी सेवा का मूर्तिमान रूप है और हमेशा भगवान की सेवा में लगी रहती है। और हम जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, वह क्या है, वह सेवा के भाव के लिए हम याचना कर रहे हैं। एक भक्त कहते हैं कि अभी मैं हरे कृष्ण महामंत्र जप करता हूं और उसका अर्थ है कि भगवान मुझे अब सेवा में लगाओ, तो वो तो लगता है मुझे पहले से बहुत सेवा है, मुझे और सेवा नहीं चाहिए, तो शायद मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप बंद करना चाहिए तो भगवान और सेवा दे देंगे मुझे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब हम भगवान से कह रहे हैं कि मुझे आपकी सेवा में लगाओ, उसका मतलब क्या है कि सेवा की इच्छा दो आप मुझे, सेवा करने की इच्छा दो। जो अगर इच्छा आ जाएगी तो हम अंतरंग रूप से और बाहर से दोनों से भगवान से हम संबंध हो जाएगी। तो जो भक्ति है, प्रभुपाद जी बोलते हैं डिवोशनल सर्विस, तो इसमें डिवोशन इज इंटरनल, सर्विस इज एक्सटर्नल। जो भक्ति है अंदर है, सेवा बाहर है, और दोनों के माध्यम दोनों पद्धति से हम भगवान से संबंध हो जाते हैं। और इस प्रकार का संबंध राधा रानी दर्शाती है और उसी प्रकार का संबंध प्रभुपाद जी ने दर्शाया है, और उसी प्रकार से हम भी भक्ति करके हम राधा रानी का आशीर्वाद आज प्राप्त कर सकते हैं अपनी प्रार्थना करके, और हम भी भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। जो मैंने प्रार्थना शुरुआत में बोली थी उसे हम दोहराएंगे अभी और इस प्रवचन को विराम देंगे। तो आप कृपया मेरे पीछे बोलिए, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता,
देवी
कृष्णमयी प्रोक्ता, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता,
देवी कृष्णमयी प्रोक्ता,
राधिका पर देवता,
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 सर्वलक्ष्मीमयी सर्व,
सर्वलक्ष्मीमयी सर्व,
सर्वलक्ष्मीमयी सर्व,
सर्वलक्ष्मीमयी सर्व,
सर्वलक्ष्मीमयी सर्व,
सर्वलक्ष्मीमयी सर्व,
कांति सम्मोहिनी परा,
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 कांति सम्मोहिनी परा।
श्रीमती राधा रानी की जय, राधा अष्टमी महामहोत्सव की
जय,
श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की
जय,
ताय गौर प्रेमानंद।
इस ग्रेस चैतन्य चरण प्रभु की जय।